ओम शांति। अभी हम सभी कविता दीदी के पवित्र जीवन में दिनचर्या का महत्व का एक टॉपिक के बारे में सुनेंगे। कविता दीदी कल शाम हमारी बट्टी को आरंभ किया है। इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हमारे जीवन में, हम जो चाहते थे वो सब हमारी जीवन में धारण करने के बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट्स सुनाया, हमारी मन को इतना दिलखुश कर लिया। और अभी भी हमारी ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या का सुनाने के लिए हमारे समक्ष हाजिर है। दीदी की परिचय सुनेंगे तो बहुत है, लेकिन दीदी ज्ञान में 50 साल से ऊपर ज्ञान में है और सेंटर में समर्पित होकर के 45 इयर्स ऊपर हो गई है। दीदी अपने जब से सेंटर में आया तब से बहुत अच्छा सेवा है कि चित्र प्रदर्शनी वगैरह बहुत, कल हम सुना है दीदी के बारे में। इतनी अच्छी विशेष आत्मा कविता दीदी हमारी बट्टी में आकर के हम सभी ब्राह्मण आत्माओं की झोली कूट कूट के भर रहे हैं। इसलिए कविता दीदी को हम और एक बार वेलकम करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, दिल से स्वागत कर रहे हैं कविता दीदी को। अभी हम सुनेंगे कविता दीदी की पवित्र जीवन में दिनचर्या का महत्व के बारे में। ओम शांति।
ओम शांति। आप सब ओम शांति के स्वरूप में बैठे हो, हा? बाबा के घर आना माना गिलास और क्लास। अभी हमने जूस का गिलास पिया तो अभी हम फिर क्लास के गिलास में आ गए। सुबह से यही कर रहे हैं ना। आप सबको मालूम हो कि आज भारतवर्ष में अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। जानते हो ना अक्षय तृतीया। तो हम बाबा के मास्टर नॉलेजेबल बच्चे हैं तो चिंतन चलता है। दुनिया में तो लोग मनाते हैं लेकिन हम बनते हैं अक्षय माना इटर्नल, जिसे कोई नष्ट ना कर सके, क्षय ना हो, वो है इटर्नल अर्थात शाश्वत। और वो भी इन्होंने क्या कहा, तीन अक्षय तृतीया। तीन चीजें कभी नष्ट नहीं होती, वो सदा अक्षय है, अक्षुण्य है, शाश्वत है और सभी के लिए। सबसे पहले जो अक्षय अमूल्य धन हमें मिला है, हर प्राणी मात्र को मिला है, हर प्राणी मात्र को मिला है, जो प्राण प्यारे शिव बाबा ने सबको दिया है, विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं को दिया है, वो है आत्मिक अक्षय। आत्मा कभी कभी आत्मा नष्ट नहीं होती, वो अक्षय है, अक्षुण्य है, शाश्वत है ना। और हम बच्चों को तो आप समान आत्मा दी है भगवान ने, बाबा ने। आज बाबा ने कहा ना, प्राण प्यारे मीठे बाबा ने हमें बाप समान अक्षुण्य आत्मा जीवन जीने के लिए दी है। तो दिल से क्या निकलता है, अपनी आत्मा के लिए। अब जो हमारी आत्मा हमें प्राप्त है, उस प्राप्त हुई आत्मा के लिए, प्राण प्यारे बाबा के लिए दिल ही दिल से क्या निकलता है, शुक्रिया निकलता है। और ये परमात्मा शुक्रिया आत्मा के प्रति करना ही अपनी दिनचर्या की मनचर्या को बनाना है। दूसरा शून्य है प्यारे मीठे बाबा। आत्मा तो परिवर्तित हो जाती है, सतो रजो तमो में आ जाती है अक्षुण्य होते हुए भी, लेकिन मेरे मीठे प्यारे बाबा वो सर्वदा अपरिवर्तनशील अक्षुण्य है, ऑलवेज प्योर, ऑलवेज निराकार, ऑलवेज ज्ञान सागर, ऑलवेज ब्लिसफुल, ऑलवेज पीसफुल, है ना? वो किसका है? वो मेरा है। तो आज की जो अक्षय तृतीया का पर्व भारत वर्ष में मनाया जा रहा है वो तो मना रहे हैं। वो तो धन को ही, जो धन नष्ट ना हो उसको ही, उसको रख के समृद्धि प्रतिष्ठा इन भौतिक चीजों को, स्थूल चीजों को अक्षुण्य मानकर उसकी मुबारक देते हैं। और हम बाबा के बच्चे इटर्नल सोल को सोल कॉन्शियस बनाकर अक्षुण्य बनाने की मुबारक देते हैं। गॉड कॉन्शियस में रहकर, गॉड से सेल्फ एम्पावर करके हम उसके अक्षुण्य की, परमात्मा को मुबारक देते हैं। और तीसरी जो अक्षुण्य चीज है वो है प्रकृति, इनर प्रकृति, आउटर प्रकृति। इनर प्रकृति, जैसे भी डॉक्टर सविता जी ने बताया था, कर्मयोगी बनने के लिए हमारी आत्मा के सातों गुण हमारी निजी नेचर है, निजी प्रकृति है, स्वाभाविक स्वभाव है। आप देखिए, कोई भी क्रोधी कितना भी क्रोध कर ले, अगर उससे पूछा जाए भाई क्रोध किया क्यों, तो क्या जवाब देता है? शांति पाने के लिए। पानी को कितना भी उबाल लो आप, उबलने के बाद थोड़े समय पश्चात क्या होता है? क्यों? क्योंकि जल का स्वाभाविक गुण शीतलता है। इसी प्रकार अक्षुण्य आत्मा का स्वाभाविक गुण शांति है। बॉडी कॉन्शियस में आके वो कितना भी आवेश, रोब, क्रोध, चिड़चिड़ा, उदासी, निराशा, दिल शिकस्त, ये नेगेटिविटी में चला जाए, लेकिन अल्टीमेट क्या चाहता है? पीस। क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक नेचर शांति है। हम दो जने बात कर रहे होते हैं, तीसरे को उस बात से कोई ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन उसका अटेंशन कहां जाता है? कहां जाता है? ये दो क्या बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक गुण जिज्ञासा है, ज्ञान है, जानना, क्यूरियोसिटी। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा की, मुझे मालूम है ये मेरा मैटर नहीं है, ये कुछ अपनी कारोबार कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मेरी आंखें, मेरा दिमाग, मेरा बॉडी पोस्चर, मेरा बुद्धि उस तरफ जाती है। क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक गुण जिज्ञासा और प्राप्ति और ज्ञान है, ये हमारे स्वाभाविक गुण है। तो इनको हमें अक्षुण्य बनाने की मुबारक एक दूसरे को देनी है, इनको अक्षुण्य बनाने का प्रक्रिया में अपने को डालना है, अर्थात ज्ञान के स्मृति स्वरूप बन के रहना है, विस्मृति को समाप्त कर देना, अर्थात अक्षय तृतीया की मुबारक देना। और जो बाबा हमें होमवर्क देते हैं कि अपनी इनर प्रकृति को शुद्ध, प्योर, परफेक्ट बना के प्रकृति के पांचों तत्वों को भी क्या करो? वाइब्रेट करो, उसको भी शुद्ध करो। क्योंकि लंबे समय से हमारी इनर प्रकृति की विकृति के कारण बाहर की प्रकृति भी बिगड़ गई है, दूषित हो गई है, जिसे बाबा कहते हैं कि प्रकृति को क्रोध आया हुआ है, इसलिए वो क्या कर रही है? नेचुरल कैलमिटीज आ रही है, कहीं भूस्खलन हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा हो रहा है। इसका उपाय अक्षय तृतीया प्यारे बाबा की उस शिक्षा को याद दिला रही है कि हम अपनी इनर प्रकृति को स्वराज्य अधिकारी बनाकर इस बाहर की प्रकृति को भी शुद्ध शांत ऑर्डर में कमांड देकर उसे पीसफुल परफेक्ट और प्योर बना दें। ऐसी अक्षय तृतीया की मुबारक आप सब भाई बहनों को इस मौन भट्टी में, इस अंतिम पेपर की बेहद की वैराग्य वृत्ति में स्वीकार हो। बहुत बहुत शाश्वत अविनाशी सुख, अविनाशी खुशी, अविनाशी समृद्धि और अविनाशी संपन्नता की प्यारे बाबा के साथ सदा साथी बनकर रहने की आप सभी को बहुत 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 अक्षय तृतीया की मुबारक। सबको ट्रांसलेशन में आ रहा है? हाथ उठा के बताएं। थैंक यू। आज की मौन भट्टी का विषय है हम सभी होली हंस बाबा के, परम पवित्र बाबा के पवित्र स्वरूप बच्चे बैठे हैं, उसमें दिनचर्या का महत्व। हम ब्राह्मणों की दिनचर्या चलती है मनचर्या से। आप देखेंगे किसी भी चीज को गति देने के लिए ऊर्जा देनी होती है। शरीर को गति हमारा सात्विक शुद्ध भोजन देता है, हमारी मोटर गाड़ी को पेट्रोल डीजल एनर्जी देता है, तो हमारी आत्मा को एनर्जी हमारे बाबा की श्रीमत देती है, शिक्षाएं देती हैं, जिससे हमारी आत्मा की मन की गति, बुद्धि की शुचिता दिव्यता प्रगति को प्राप्त करती है। आत्मा और शरीर बाबा का बनने से पहले भी था और पहले भी हम 24 घंटे की दिनचर्या को जीते थे, लेकिन उसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ कंटेंटमेंट, सेल्फ अचीवमेंट महसूस नहीं होता था। प्राण प्यारे बाबा ने अपना बनाकर श्रीमत और शिक्षा के दो चप्पू देकर हमारी दिन की दिनचर्या को मन की चर्या के द्वारा खुशहाल, प्राप्ति संपन्न, संतुष्टता और प्रसन्नता से पग पग पर भरपूर किया है। ऐसा अनुभव करते हैं आप? जब बाबा की शिक्षा और आज्ञा भूलती है तो मुश्किल लगता है, और जितना समय बाबा की शिक्षा और आज्ञा हमें याद रहती है, संकल्प और समय हमारा सफल होता है। ऐसा महसूस करते हैं? बोलो। हाँ जी। तो हमारी जगने से पहले जो सोने की श्रीमत है वो क्या है? आधा घंटा सब कारोबार से फ्री होकर बाबा की याद में बैठना। किस लिए? शुद्ध और श्रेष्ठ श्रीमत के संकल्पों से मन आत्मा का भरपूर होके जब सोता है तो उसकी जागृत अवस्था कैसी होती है? बहुत शांत और सशक्त और शक्तिशाली होती है। और जब उसकी सुबह आंख खुलती है तो योग करना नहीं पड़ता, बल्कि लगता है कि मैं बाबा की गोदी से ही उठ रहा हूं। जो प्यारे बाबा की शिक्षा है अमृत वेला माना विधिवत अनुभव युक्त बाबा के साथ गुण और शक्ति संबंधों की कुछ न कुछ अनुभूति करते हुए योग करना, वो हमारा अमृत वेला दिनचर्या का शुभारंभ वहां से होता है। कहा जाता था किसका मुख देखकर उठे हो, बोलो किसका मुख देख के उठते हो? अपनी शुद्ध पवित्र आत्मा का मुख देखते हो और उस परम सत्य परमात्मा का सर्व संबंधी का परम सुखकारी हितकारी का मुख देखकर जागृत होते हो। शरीर पोश्चर में बाद में आता है, लेकिन जैसे ही आत्मा शरीर में जागृत स्थिति को सुषुप्त अवस्था से जागृत होती है तो पहले ही आत्म भाव और परमात्म स्मृति हमारे साथ जुट जाती है, ऐसा ही है ना? फिर बाबा को याद करना, कितना भी शरीर में कष्ट हो, थकावट हो, आलस्य अलवेलापन हो, वो प्रभु प्रीत में पर ब्राह्मण जीवन की रीत में सब पीछे रह जाता है और पाना था सो पालिया याद आ जाता है। उसके लिए बाबा ने हमारी सोते समय जो ड्रेस है उसकी भी शिक्षा दी है। हमारी ड्रेस कैसी होनी चाहिए? ऑलवेज रेडी पोजिशन। आप सबको याद हो पिताश्री ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष से ऊपर बाबा के बने, 94 वर्ष की लंबी शारीरिक आयु प्राप्त करी, माउंट आबू जैसे ठंडी के स्थान में रहते थे। तो बाबा को एक बार विचार आया कि ठंडी की सीजन है, बाबा धोती की जगह पजामा पहने, बाबा मालिक थे लेकिन बिना अलमाइटी से पूछे कोई कार्य नहीं करते थे। बाबा ने संदेश पुत्री को भेजा कि बाबा को पूछ के आओ कि बाबा धोती के स्थान पर पजामा पहन ले। बाबा को मना कर आदेश आया। उसके बाद बाबा को संकल्प भी नहीं आया कि बाबा पजामे को, कारण कुछ भी है लेकिन बाबा ने मना किया ना, परहेज बताया ना। बस आज के महावाक्यों में बाबा ने बाबा को याद किया, सब कुछ स्वाहा कर दिया, पल में कर दिया और नंबर वन चला गया। हम भी यही चाहते हैं सब। बाबा का अमृत वेला 2 बजे से होता था, हम ब्राह्मण 4 बजे अमृत वेला करते हैं, हमारी दिनचर्या 4 बजे से शुरू होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी इस भट्टी से हमें सेट करनी है, परिवर्तन करनी है। और वो होगी तभी जब हम अपनी रात्रि सोने की विधि को श्रीमत प्रमाण जितना बना के सोएंगे उतना अमृत वेला हमारा पावरफुल और प्राप्ति संपन्न बनेगा। दूसरा है मुरली क्लास। दिनचर्या में मुरली का हमारी कोड कंडक्ट, हमारी जीवन की मार्गदर्शना, हमारी पवित्रता को व्यवस्थित रीति प्रगति वृद्धि कराने वाली वो मुरली ही है। पवित्रता अर्थात सोल कॉन्शियस, पवित्रता अर्थात एक बाप की याद सतत रहे, किसी भी पल मुझे भूले नहीं। स्थूल पवित्रता में तो हम बहुत आगे आ गए, सूक्ष्म पवित्रता में भी हमने पासिंग मार्क्स ले लिए, लेकिन ये भट्टी हमारी प्यूरिटी को पास विद ऑनर में परिवर्तित कर दे, उसके लिए मुरली का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखता है। जो प्रतिदिन बाबा के यज्ञ स्थल तीर्थ स्थान सेवा केंद्र पर जाकर मुरली सुनते हैं, वो हाथ उठाएं। मार्जी ने सबने नहीं उठाया। तो आज इस भट्टी से हम ये अपनी मनचर्या और दिनचर्या को बनाने के लिए और पवित्रता को बढ़ाने के लिए, पूर्णमासी के चंद्रमा की भांति सोलह कला पवित्रता की धारण करने के लिए मुरली को हम सेवा केंद्र पर जाकर सुने। और मुरली ही नहीं, मुरली से पहले आधा घंटा योग, क्योंकि मुरली हमारा भोजन है, तो उससे पहले योग के द्वारा हमारा मन और बुद्धि पवित्र और शुद्ध होता है। वो परमात्मा के पवित्र और शुद्ध महावाक्यों को अपने अंदर समाने, भरने और धारण करने के लिए एक एक मुरली पर यदि जीवन पर्यंत मनन चिंतन किया जाए, व्यवहार रूप में उसको अप्लाई किया जाए, विशाल उसमें नॉलेज है। जीवन कम पड़ जाएगा, एक मुरली कम नहीं पड़ेगी। इतना खजाना, इतना मार्गदर्शन, इतनी शिक्षाएं, इतना मन को सशक्त, प्रकाशवान, श्रेष्ठ बनाने वाला, परमात्मा के साथ का अनुभव कराने वाला मुरली का खजाना है। आप सबने सुना है हमारी दादी प्रकाशमणि जी, हमारी आदरणीय दादी गुलजार जी, दादी जानकी जी एक एक मुरली को प्रतिदिन कितनी कितनी बार पढ़ते थे, बोलो। एक बार, दो बार, मिनिमम चार बार, मालूम है ना। फिर करेंगे कब? कौन कहता है कि मैं भी चार बार प्रतिदिन पढ़ता हूं? या आज से हम बाबा के इस ज्ञान के खजाने को, मुरली को, पवित्र मन, पवित्र बुद्धि और पवित्र मनचर्या को बनाने के लिए कम से कम चार बार पढ़ेंगे। ले सकते हैं संकल्प? हाँ जी, धीरे धीरे ट्रांसलेशन के कारण उठ रहा है, धीरे धीरे जी लीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि मुरली जब आप पढ़ो तो मोबाइल से मत पढ़ना, क्योंकि मोबाइल हमारी एकाग्रता को, ये जो मुरली का पेपर होता है ना, वो आत्मा को बहुत शक्ति देता है, उससे हमारी एकाग्रता बनती है, उससे हमारा बार बार हम उसको अपनी रिपीट कर लेते हैं। बाई चांस अगर मुरली मेरे पास पेपर की नहीं है, तब इमरजेंसी के रूप में आप उससे पढ़ लो, वो एक बात अलग है। लेकिन लक्ष्य हो कि बाबा के घर से कुछ मुरलियों का स्टोरेज डेट और सन से ताल्लुक नहीं है, मुरली माना मुरली, उसे कुछ स्टोरेज अपने पास घर में, ऑफिस में रखिए। और उसे निकाल के पढ़िए। संडे की एक अव्यक्त वाणी का होमवर्क सातों दिन कीजिए, फिर देखिए आपका मन की चर्या कैसी बनती है। प्यारे बाबा ने मुरली के पश्चात हमें शिक्षा दी है, आज्ञा दी है कि प्रतिदिन मुरली के ज्यादा नहीं 3 बिंदु दिन भर अपने भाव में, अपने संस्कार में, स्वभाव में धारण करो। आज बाबा ने कहा, जैसे घोटते हैं ना, वो कहते हैं भांग घोट के पीते थे, तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा अपने मन के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर, अपने बोल के अंदर, अपने कर्म के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर, अपने संपर्क संबंध के अंदर, हम आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा दिन में घुटते रहे। जब वो घुटाई हमारी होती है तो हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, हल्का रहता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, प्यारे बाबा की शिक्षा को, आज्ञा को हम निरंतर पालन कर रहे हैं। किसने कहा मुरली में, बोलो, बाबा ने कहा। बाबा माने प्राणाधार, मीठा बाबा, निष्काम निस्वार्थ कल्याण परोपकार करने वाला, देने ही देने वाला बाबा है मीठा बाबा। हर कोई तो कंडीशन से देता है और बाबा अनकंडीशनल देता है, है या नहीं। हम बाबा की श्रीमत शिक्षा आज्ञा पर कई बार भूल जाते हैं, अवज्ञा कर लेते हैं और बाबा से प्यार होने के कारण बाबा को अगले रोज बताते हैं, बताते हैं ना, बोलो, बताते हैं ना। तो बाबा क्या कहता, कभी कहता क्यों किया। हर मनुष्य आत्मा तो क्वेश्चन रेज करेगा, बाबा क्या कहता है, अच्छा बच्चे महसूस कर लिया कि श्रीमत से विपरीत मनमत से कर लिया, फायदा किया था, महसूस किया था इसमें मेरा कल्याण नहीं है और आपने कर लिया, कोई बात नहीं। बाबा क्या कहता है, क्या कहता है, कोई बात नहीं, महसूस कर लिया ना, पर आगे से नहीं करना। क्यों किया नहीं कहता। मनुष्य आत्मा और परमात्मा में ये अंतर है, इसलिए हम अपने मन की बात, कमी कमजोरी को किसी मनुष्य आत्मा से साझा नहीं करते, हम परमात्मा से ही साझा करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, वो हमें ब्लिस कर देता है, प्लीज कर देता है, कहता अच्छा कोई बात नहीं, फुल स्टॉप, पर आगे से बोलो, कहता है ना बाबा। और हम क्या कहते हैं, ओ मेरे प्यारे बाबा, आप कितने दयालु हैं, आप कितने कृपालु हैं, आप कितने महान हैं, मैं रोज फीका तीखा चरपरा कड़वा नालायक बच्चा बनता हूं और आप आके मुझे क्या बोलते हो, बोलो, मीठा बच्चा। आपका प्यार अपने बच्चों से ऐसा है जैसा बाबा का मुझ बच्चे के कल्याण और योग्य बनाने के लिए है। धैर्य, पेशेंस, क्षमा भाव, दया भाव, है ना? ऐसे बाबा को प्रतिदिन, प्रतिपल उसकी आज्ञा शिक्षा को चिंतन करना, सोचते रहना, सोच को फिर से सोचना, क्या ये बाबा की श्रीमत प्रमाण है। पवित्र जीवन माना श्रीमत प्रमाण, पवित्र जीवन माना ब्रह्मा बाबा के जीवन की आंसर बुक की कॉपी। आज मुरली का चिंतन चल रहा था तो यही चल रहा था, स्थूल समर्पण भी बहुत मुश्किल है लेकिन बाबा ने स्थूल समर्पण भी किया, संबंधों का समर्पण भी किया, लेकिन उस सब समर्पण के बाद सूक्ष्म समर्पण भी किया। कभी बाबा को मैंपन नहीं आया। हम मनमत श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं, सुविधा उपयोगी बना लेते हैं, तो हमारी मनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। हल्की, शक्तिशाली और तीव्र गति वाली नहीं रहती है। यदि हम अपने मन की चर्या को बाबा के अनुसार चलाना चाहते हैं, कम समय में अधिक प्राप्ति करना चाहते हैं, तो बाबा की मुरली श्रीमत सच्ची गीता को दिन भर हम रिपीट करते रहे, ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट, जिसे बाबा कहते हैं हर घंटे में। हम कार्यक्षेत्र पर, दफ्तरों में अपनी बुद्धि के स्तर पर व्यस्त रहते हैं, लेकिन बुद्धि को भी ताकत देने के लिए, बुद्धि के द्वारा किए हुए कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, सफल, सक्षम और एक्सीलेंस देने के लिए हमें ये 1 मिनट साइलेंस और 1 मिनट बाबा की शिक्षा बुद्धि को कर्म करते हुए याद दिलाना, माना कर्म में कुशलता श्रेष्ठता लाना है। कोई भी आत्मा मिले, दिन भर मुझे उसे क्या देना है, कुछ ना कुछ देना है, क्योंकि मैं विधाता दाता का बच्चा देवता बनने वाला हूं। कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी उसको दूं। क्या दूं, क्या दूं? आज बाबा कह रहे ये कागज के नोट भी बंद हो जाएंगे, ये फिजिकल गिफ्ट सब देना लेना बंद हो जाएगा, क्या दो? हमें बाबा ने दिए अविनाशी ज्ञान रत्न, सुनते हैं ना। एक राजा ने नुमाइश में मेला लगवाया और उसमें एक ज्ञानी जी ने ज्ञान की दुकान लगाई, लेकिन उसकी एक एक शिक्षा की कीमत 1,00,000 रुपए थी। राजा का नियम हुआ करता था कि वो शाम को मेले में चक्कर लगाता था, और जिस दुकानदार का सामान नहीं बिकता था उसको मुनाफा दिलाने के लिए उसके सामान की खरीद किया करता था। तो भौतिक जगत में भौतिक मेले की चीजें तो सब बिक गईं, लेकिन ज्ञानी जी की ज्ञान की दुकान और कीमत भी एक शिक्षा की 1,00,000 रुपए कोई भी खरीद करने, बोलो, नहीं पहुंचा। राजा पहुंचा और राजा ने कहा चलो इसकी 2 शिक्षाएं खरीद लो। वो 2 शिक्षा क्या थी? कर्म के परिणाम को सोचकर कर्म करो, सोचकर। और उस शिक्षा का लाभ, उसका उपयोग बताया गया कि इसे सब जगह लिखवा दो, अपने बर्तनों पर, अपने कक्ष में, अपने वस्त्रों पर, हर जगह इस शिक्षा को लिखवा दो। दूसरी शिक्षा थी समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलता। भाग्य बनता है कर्म से। राजा ही शिक्षा का महत्व समझता था और राजा ही उसका मूल्य व्यय कर सकता था। विद्वान के कहे प्रमाण उसने उन शिक्षाओं को अपने घर में, आंगन में, दरबार में, वस्तुओं पर लिखवा दिया। आप सबने सुना होगा कि राजा के मंत्री का भाव बदला और उसने उसको मारने की तैयारी की। उसने वैद्य को जहर देकर घोटने के लिए दिया, लेकिन राजा की उस खल्लर पर लिखा हुआ था कर्म के परिणाम को सोचकर कर्म करो। वैद्य का हाथ जहर घोटते समय क्या हुआ, हिलने लगा। क्योंकि अगर राजा को ये पता चल गया कि जहर दिया गया तो सजा किसे होगी, वैद्य को। उससे ध्यान हटा के सामने देखा तो वहां भी यही लिख रहा, तो घबराने लगा। आखिर क्या हुआ, उस मूल्यवान शिक्षा से इस राजा के प्राण बोलो बचे। वो एक आत्मा की शिक्षा थी, एक नैतिक मूल्य की शिक्षा थी, लेकिन मेरा प्राणाधार बाबा मुझ आत्मा को 63 जन्मों के विकर्मों से मुक्त होने की शिक्षा और 21 जन्मों के भाग्य उदय करने की शिक्षा दे रहा है, जो एक एक बाबा की मुरली की शिक्षा पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाली है। तो बार बार हम रिपीट करते रहे, हर घंटे में एक मिनट उसको अपने अंदर झांकते रहे, देखते रहे। तो जितने हमारी दैनिक दिनचर्या के ट्रैफिक कंट्रोल बने हैं, वो ट्रैफिक कंट्रोल हमें करने नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा मन बाबा की याद के साथ का अनुभव करता रहेगा। और जब हमारी दिन भर की दिनचर्या थैंक यू ट्रांसलेशन चल रहा है नहीं चल रहा, भाई ठीक करो, चल रहा है। जब हमारी दिन भर की दिनचर्या इस प्रकार की होगी तो जो नुमा शाम का हमारा योग है वो कैसा होगा, अव्यक्त स्थिति का होगा। क्योंकि व्यक्त और व्यर्थ दिन भर की दिनचर्या में हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, हमारी इंद्रियों से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। न व्यक्त है न व्यर्थ है। बाबा की पहली पहली शिक्षा हमें पवित्र और योगी बनाने के लिए हमें याद रहे वो कौन सी है, देह सहित, देह के सर्व संबंधों को बोलो भूलो, अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को। सबको पक्का है ना, ये पहली शिक्षा है, ये पहली आज्ञा है हमारा पवित्र जीवन, योगी जीवन बनाने की। और इस कैनोपी थीम को एक्सिक्यूट करने के लिए, व्यवहार में उतारने के लिए बाबा की मुरली मददगार बनती है कि मैं अपने को आत्मा कैसे समझूं, किन किन स्मृतियों से समझूं, जो मन की टीम है, मेरे थॉट, मेरे इमोशंस, मेरा एटीट्यूड, मेरी मेमोरी, देह संबंधों की मेमोरी नहीं, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, कहां से आई हूं और क्या लक्ष्य है मेरा, ये चार मेमोरी मेरे मन के अंदर चलती रहे। तो मेरे माइंड की टीम मेरी बुद्धि को दिव्य और श्रेष्ठ बनाती है। फिर बाबा मुझे परमधाम और सूक्ष्म वतन में नहीं दिखता, फिर हमारे पवित्र जीवन होने के कारण बाबा मुझे तुम तो यही कहीं मेरे बोलो, मैं झुकता हूं बाबा मुझे पीछे से उठा रहा है, मेरी नजरें सामने है तो बाबा मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इधर देख रहा हूं तो लगता है बाबा इधर से मुझे बुला स्पर्श कर रहा है। साथी का अनुभव, साथ का अनुभव हर पल होने लगता है। और जब मन और बुद्धि मेरा ऐसा कार्य करती हैं तो मेरी दिन की दिनचर्या प्राप्तियों से भरपूर हो जाती है, हर पल बाबा का शुक्रिया, हर पल बाबा की शिक्षाओं का शुक्रिया, हर पल अपनी आत्मा का शुक्रिया, आत्मा से निकलता रहता है। कोई नहीं पराया, ये जग सारा अपना परिवार है। आप देखिए घर परिवार पे अगर कोई विकलांग बच्चा होता है, माँ बाप जीवन भर उसको पालते हैं, संबंध को निभाते हैं, कभी कुछ उसके बारे में ये सोचते हैं कि दुनिया छोड़ जाए तो अच्छा है, बड़ी खुशी खुशी से निभा लेते हैं। तो आज कई बार हम अपनी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं, मन मत को सहारा दे देते हैं, दूसरे पुरुषार्थी की कमी कमजोरी को देखकर। यदि मेरे मन में ये भाव होगा कि इसकी कमी नहीं, इसकी कमजोरी नहीं, ये मेरी ही कमी कमजोरी है, क्योंकि मेरे पिता की ही संतान है, ये मेरे ही बाबा का बच्चा है, तो ना वो प्रभावित होगा और ना मैं प्रभावित होऊंगा, क्योंकि प्यारे बाबा की शिक्षा है। ब्राह्मण जीवन में एक का 100 गुना प्राप्त होता है। कटता किस तरीके से है? एक का 100 गुना। यदि मैं किसी आत्मा की विशेषता को देखकर अपनी मनचर्या और दिनचर्या को तीव्र करता हूं, तो उसका 100 गुना पुण्य मैंने बढ़ा दिया और अपना भी बढ़ा लिया। यदि किसी पुरुषार्थी की कमी कमजोरी को देखकर मैंने अपने पुरुषार्थ को प्रभावित कर लिया, तो 100 गुना दंड उसका भी बना दिया और 100 गुना दंड अपना भी बना लिया। दैनिक दिनचर्या में ऐसा सूक्ष्म अटेंशन बाबा ने जो हमें शिक्षा दी है, उसका अप्लाई करते हुए मैं यदि चलता हूं, तो जब सायंकाल हम नुमे शाम का योग करते हैं, तो वो हमें अनुभव होता है कि सूक्ष्म वतन की अव्यक्त पालना अव्यक्त फरिश्तों के द्वारा मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही है। मैं आत्मा विश्व के ग्लोब में सूक्ष्म वतन वासियों से अव्यक्त भाव की शक्ति लेकर और विश्व की जरूरतमंद आत्माओं को शांति, सुख और पवित्रता के प्रकंपन फैलाकर अपना कई गुना भाग्य जमा कर रहे। इतना ही नहीं, प्यारे बाबा ने कहा है, अव्यक्त वाणी 75 की है ये दिनचर्या के ऊपर, कि जब रात को सोते हो ना, सोते हैं ना, मेडिकल साइंस तो कहती है 10 घंटे सो, 7 घंटे सो, 8 घंटे सो, कहती है ना, हम पे है इस बात का कोई असर? हम बाबा के बच्चे तो 4 घंटे, 5 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे, इससे ज्यादा कोई नहीं सोता, क्योंकि सोल कॉन्शियस होने में नींद की जरूरत इतनी नहीं रहती जो फिजिकल एक्टिविटी वालों को घंटों की आवश्यकता होती है। तो बाबा ने कहा है, जब रात को सो, कैसे सो? 9 बजे के बाद मोबाइल दूर, देह देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के वैभव, देह के पदार्थ, इन सब से 9 बजे के बाद फुल स्टॉप, बिंदी। सिर्फ प्यारे बाबा ने आज सुबह से लेकर मुझे जो आज्ञा, शिक्षा, पालना, प्यार, प्राप्ति कराई, उसको अंतर निरीक्षण करूं मैं बैठ के, कहां तक आज पहले पालन किया? चाहना थी पालना की, लेकिन कौन से ऑब्स्टेकल ऐसे आए जिसके कारण मैं उसको पालन नहीं कर सका? आदरणीय मोहिनी दीदी जो हमारी वर्तमान मुख्य प्रशासिका बनी है, वो हम टीचर्स का क्लास ले रही थी, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई कि तीन संबंध तो हमारे बाबा से मुख्यतः है ही है, बाप, टीचर और सतगुरु। लेकिन मैं डेली रात को सोते समय बाबा को चौथे संबंध से भी कॉल करती हूं, और वो संबंध है धर्म राज। आज का हिसाब आज ही मैं बाबा को दे देती हूं, क्योंकि मैं धर्मराज के सामने लास्ट में जाऊं उससे बेटर है रेगुलर वे में अपनी आदान प्रदान करके स्वच्छ, साफ और क्लियर हिसाब कर लूं। मुझे बहुत अच्छी लगी है उनकी बात। और मैं अपने आप को अंतर निरीक्षण करके बाबा को उसका क्षमा पत्र संकल्प से देकर और अगले दिन की तैयारी करके मैं बाबा को गुड नाइट करती। जब इस विधि से हम अपनी दिन की दिनचर्या को समापन करेंगे तो बाबा ने कहा है ऐसे ब्राह्मण आत्माएं जब निद्रा लोक में जाती हैं तो वो निद्रा लोक नहीं होता, वो निद्रा योग हो जाता है। आपने देखा है फ्लावर में रात की रानी का फ्लावर, बोलो, रात की रानी जो रात को महकती है फूल, हाँ जी, हाँ, तो वो रात में ही खुशबू फैलाता है और वो किसी एक दो को खुशबू नहीं देता, जहां वो होता है उसके पूरे वायुमंडल में खुशबू फैला देता है। वो दिन में नहीं खुशबू देता, रात में ही देता है। तो बाबा ने हम योगी बच्चों को, पवित्र बच्चों को संपूर्ण पवित्र बनने की विधि में, दिनचर्या में बताया कि रात को सोते समय कैसे सो, योगी निद्रा, रूहानी निद्रा, पवित्र प्रकंपन अपने वातावरण में चारों ओर फैलाते हुए उस रात के रानी के पुष्प की भांति आपकी निद्रा हो। सोना तो जरूरी है, सोते तो सभी हैं, लेकिन बाबा की श्रीमत क्या है कि देह के भान में नहीं सोना है, आत्मा को परमात्मा से हिसाब किताब क्लियर करके, कनेक्ट करके, अगले दिन के अमृत वेले का कैरी फॉरवर्ड करके कि मुझे कल सुबह जगते ही परमात्मा मिलन करने के लिए अपने को तैयार करना है। तो फिर कैसी होगी हमारी दिनचर्या? श्रीमत प्रमाण होगी दिनचर्या, अलौकिक जीवन की पवित्रता को बढ़ाने वाली होगी दिनचर्या, परमात्मा के साथ का आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार बनने वाली और बनाने वाली होगी दिनचर्या, पिता श्री ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाली होगी दिनचर्या, तन मन धन समय संकल्प को सफल करने वाली होगी दिनचर्या, व्यर्थ और व्यक्त से, सुविधाजनक जीवन से मुक्त रहने वाली होगी दिनचर्या। गुरुवार के दिन बाबा को भोग लगता है ना, एक गीत चलता है, वक्त है कम लंबी मंजिल तेज कदम चलना होगा, सुना है, चलता है ना भोग के दिन, वक्त है कम लंबी मंजिल तेज कदम चलना होगा। हाँ, तो उसमें आता है साधन और सुविधाओं की शैया पे ना सो जाना, माया के प्रलोभन प्यारे हैं इनके वश ना हो जाना। बाबा ने हमें पहचान दी है, ज्ञान दिया है, अनुभव दिया है कि जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। लेकिन जब बाबा की श्रीमत मेरे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर भरी हुई होती है तो माया एक बार तो आती है संकल्प में, सो जाऊं, सभी ने कहा किया है, मैं भी कर लूंगा, लेकिन जैसे ही हम तुरंत पिता श्री ब्रह्मा बाबा को अपने सन्मुख लाते हैं, दादी दीदियों को सन्मुख लाते हैं, तो माया क्या होता है, दूर दूर तक भाग जाती है। कर्म के परिणाम को सोचकर जब हम बाबा की श्रीमत को सोचते हैं तो माया कितनी दूर जाती है, दूर दूर तक चली जाती है। तो मैं जो अव्यक्त वाणी की आपसे चर्चा कर रही थी उसमें बाबा ने, बाबा हमारा काव्यकार है, एक कविता के रूप में बाबा ने हमारी अलौकिक दिनचर्या मनचर्या को बताया कि सुबह जगो तो खाओ मक्खन। अमृत वेले के योग को बाबा क्या कहते हैं, मक्खन खाना। मक्खन क्या होता है, रोज तैयार होता है और रोज खाया जाता है, घी अलग होता है, मक्खन अलग होता है, नवनीत। दूसरा बाबा ने कहा फिर पियो पानी, मक्खन खाने के बाद पानी। बाबा ने पानी को एक्सप्लेन किया, मुरली क्लास से पहले जो हम योग करते हैं वो अमृत वेले के मक्खन समान स्थिति बनाने पर पानी पीने जैसा है। और फिर सुनो बाबा की वाणी, वाणी माने मुरली। मुरली हम सब ब्राह्मणों का क्या है, श्वास है, भोजन है, शक्ति है, कोड कंडक्ट है, हमारा संविधान है मुरली। दिन को बनो बाबा ने आगे कहा दानी, ज्ञान रत्न जो हमें मिले उनका दान करो। आप ये नहीं देखो ये पात्र है नहीं है, आप तो दो, क्योंकि जब हम देते हैं तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चेहरा कैसा होता है देते समय, बोलो। सुनाए ना गुरुजी ने शिक्षा दी दो शिष्यों को और कहा जाओ आपको आज आपको गुरु दक्षिणा देनी है शिक्षा के रूप में, और क्या गुरु दक्षिणा देनी है कि ये पुष्प ले जाओ और जो मुस्कुराता हुआ उसको देना, जो मुस्कुराए नहीं उसको। दो शिष्य थे, एक शिष्य शाम को लौटा सारे फूल लेकर और सुस्त उदास चेहरे से, एक शिष्य थोड़ी ही देर में लौट आया टोकरी खाली लेके। जी कौन सा, अच्छा अच्छा, एक गुरुजी के दो शिष्य थे, उन्होंने शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद वो जाने लगे, तो परंपरा होती है कि गुरु दक्षिणा दो, तो जाने से पूर्व गुरु दक्षिणा में गुरु ने उन दोनों शिष्यों को कुछ पुष्प दिए और कहा कि जो मुस्कुराता हुआ मिले उसे ये पुष्प देना और लौट के आना। एक शिष्य शाम को लौटा, उदास निराश चेहरे से लौटा, फूल भी मुरझा गए थे पर फूल खर्च नहीं हुए। दूसरा शिष्य लौटा, कुछ समय बाद ही लौट आया, उमंग उत्साह हर्षित चेहरा, गुरु के प्रति कृतज्ञ भाव, हाईली ओब्लाइज फील करता हुआ और प्रसन्न मुद्रा से गुरु को आके कहा मेरे सारे पुष्प चले गए। जब दोनों शिष्य इकट्ठे हुए तो गुरु ने पूछा आपके फूल क्यों नहीं गए और आपका ये हाल क्यों हुआ और आपके फूल कैसे चले गए और आप ये ऐसे कैसे हल्के फुल्के उमंग उत्साह हाईली ओब्लाइज फील करने वाले बने हुए हो, रिजल्ट ओरिएंटेड बन गए हो। उसने कहा जो बाबा की श्रीमत है दिन भर बनो दानी। उसने कहा मेरे सामने जो दिखता था ना, दिखता था, आता था नहीं, पास नहीं दिखता था, मैं उसे स्माइल करता था। कोई दूर से दिखे और मैं उसे स्माइल करूं, वो कितना भी ओवरटेक करना चाहे तो भी मैं वहां से लेके यहां तक उसकी स्माइल देता रहूं, पॉजिटिव वेव्स देता रहूं, आखिर वो मेरे नजदीक आएगा तो बोलो राइट। और आपने कहा था जो मुस्कुराए उसको मैंने दे दी, कुछ ही देर में मेरे सारे फूल चले गए। तो दान करने से कहते हैं सरस्वती के भंडारे की अपरम अपार महिमा, ज्यू ज्यू खर्चे त्यू त्यू बढ़े, बिन खर्चे घट जात। मुरली सुन ली उसको, आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा, ये घोटा नहीं चलाया हमने तो मुरली सूख जाएगी, ताकत नहीं बनेगी। तो इसलिए बाबा ने आज्ञा दी थी उस अव्यक्त वाणी में कि दिन भर बनो दानी, कोई भी मिले आत्मा उससे दो, तो उससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, हल्का रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, आपका चेहरा ओज तेज से भरपूर रहेगा और बाबा के प्रति थैंक्सफुल रहेंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड बाबा के संशोध फादर बच्चे बन जाएंगे। और रात को बनो वरदानी, सायंकाल बनो वरदानी। जब हम दिन भर उसका अभ्यास करते रहेंगे तो शाम को हम स्वरूप में आ जाएंगे, और जब स्वरूप में आते तो कहते तथास्तु, शांति चाहिए तथास्तु, सकारात्मक सोच चाहिए तथास्तु, वरदानी। और बाबा की अव्यक्त वाणी ने ही कहा दिनचर्या का समापन बनो रात की रानी बनकर, रूहानी खुशबू से भरकर, रूहानी शक्तियों से भरकर, रूहानी संबंधों में लवलीन होकर सो, तो आपकी ऐसी दिनचर्या मनचर्या आपको मन का मालिक, इंद्रियों का मालिक, कर्मयोगी जीवन और बाप समान सपूत सच्चा वफादारी यज्ञ स्नेही बना देगी। ओम शांति।
शांति। दीदी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। दीदी जी हमारी दिनचर्या के बारे में इतना अच्छा सरल तरीके से बाप दादा की अव्यक्त मूल्यों से लेकर अपने अनुभव की कान से दिनचर्या को हम दिन में कैसे सेट करना, कैसे चलना, सभी विषयों पर इतना जोर दिया। दीदी को बहुत बहुत हमारी कर कमलों से एक ही हाथ ताली से दीदी को थैंक यू देती हूँ। और हम सभी यही लक्ष्य रख करके इस बट्टी से जाना है, हम दिनचर्या को कैसे सेट करना अभी दीदी बताया, उसी अनुसार हम चलेंगे करके बाबा से ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके हम सभी जाएंगे ना, ऐसे है ना दिनचर्या। अब रोज तो हमारा दिनचर्या अलग होता है, लेकिन अभी इस पांडव भवन की बट्टी से हम यही लक्ष्य लेकर जाना है हमारी दिनचर्या को सेटिंग करने का।